आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया में बसने के क्रम में जो सबसे बड़ी मुश्किलें हमें सामने पेश आती हैं, वो ये समझना है कि परमानेंट रेसिडेंसी के लिए पॉइंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, इसकी क्या प्रक्रिया है और किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि हम गलतियां ना करें। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए मेलबर्न से लक्ष्य माइग्रेशन एजेंसी से रोहित मोहन जी जुड़ रहे हैं। रोहित जी, आपका SBS हिंदी में स्वागत है।
धन्यवाद विशाली जी।
जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो PR को अप्लाई करने के लिए लगाना होता है, ये क्या असेसमेंट सिस्टम है?
देखिए, ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी वीजा एप्लीकेशन डालने से पहले गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए, तो हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन हाई रैंकिंग कि हमने किसको इनवाइट करना है कि जो वीजा लॉन्च कर सके, सो दैट कि ऐसा ना हो कि जितने भी एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी बन रही है वो सारे ही अप्लाई करते हैं। ये पहले होता था ऐसे कि अगर आप एलिजिबल हो, आपका मिनिमम पॉइंट्स बेंचमार्क मीट होता था तो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है माइग्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में, सो उन्होंने फिर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया स्किल सिलेक्ट। स्किल सिलेक्ट में क्या है कि जो भी एप्लीकेंट है उनको पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है
जी।
सो दे वांट टू मेक श्योर कि सारे के सारे अप्लाई ना करें, कि इंस्टेड कि हम उनको रिफ्यूज करें एप्लीकेशंस को कि हमारे नंबर्स का कोटा बढ़ गया या उनको हम सिर्फ प्रोसेसिंग में रखें, तो दे वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू इज कि आप हमारे पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालें। सो उनमें से जो हमें अच्छा लगता है कि किसकी हाई रैंकिंग्स हैं या हाई रैंकिंग के अलावा कि हमें कौन सी ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी देनी है, उस हिसाब से हम उनको इनवाइट करेंगे, तो फिर इनविटेशन के बाद ही जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपना वीजा डाल सकते हैं
जी। तो PR के लिए जो सबसे कॉमन पाथवेज लिए जाते हैं, जो वीजाज के लिए अप्लाई किया जाता है, वो कौन से हैं?
उसमें दो तरीके के आ जाते हैं। एक तो होता है कि इंडिपेंडेंट स्किल्ड आप अप्लाई कर सकते हैं
जी।
और दूसरे होते हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर
जी,
जिसमें आपको एक एम्प्लॉयर की जरूरत होती है ऑस्ट्रेलिया में जो कि रेडी हो आपको स्पॉन्सर करने के लिए और उसके पास जेन्युइन पोजीशन हो जिसपे वो आपको एम्प्लॉय कर सके। मोस्टली सारे अभी जो इंडिपेंडेंट में आते हैं वो आते हैं, जैसे एक तो प्रॉपर इंडिपेंडेंट वीजा होता है जिसमें आपको स्टेट की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आता है 189। सो 189 मोस्टली वर्क्स ऑन दिस पॉइंट बेस्ड सिस्टम। और दूसरी जो माइग्रेशन में आते हैं वो आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट स्पॉन्सर्ड में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है डायरेक्ट पीआर जिसको 190 कहा जाता है, एक होता है रीजनल माइग्रेशन जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है बट वो रीजनल में होती है, आपको रीजनल में मूव होना पड़ता है, वो होता है 491। लेकिन जो रीजनल का जो 491 है वो डायरेक्ट पीआर नहीं होती, उसमें आपको डायरेक्ट पीआर लेने से पहले कुछ जो कंडीशंस हैं या कुछ टाइम तक वहां पर स्टे करना पड़ता है और कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो पीआर लेने के लिए। बट अगर आप स्टेट से 190 के लिए स्पॉन्सर्ड हो और जब आपका वीजा ग्रांट होता है तो आप डायरेक्टली आप पीआर हो जाते हो, तो आप कहीं भी मूव हो सकते हो उस स्टेट में, फिर चाहे वो मेट्रोपोलिटन एरिया ही हो
जी। जी, तो इसमें लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए और वो अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं?
देखिए, जहां तक एलिजिबिलिटी की बात आती है, जो मिनिमम पॉइंट्स डिपार्टमेंट ने रखे हैं वो एट द मोमेंट जो है वो 65 है। सो उनको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी ऑक्यूपेशन देखनी पड़ेगी कि उनकी जो स्टडी है या वर्क एक्सपीरियंस लेवल है वो कौन सी ऑक्यूपेशन का है। सो ऑक्यूपेशन के लिए डिपार्टमेंट की एक लिस्ट है जिसको उन्होंने बांटा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। वन है उनकी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिस्ट, एक शॉर्ट टर्म लिस्ट है, एक उनकी ROL लिस्ट है। सो उनको देखना पड़ेगा कि उनकी ऑक्यूपेशन किस में फॉल कर रही है, ये है नंबर वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो उस कोई भी आप वीजा डालते हो जब आप इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के लिए, आपको स्किल असेसमेंट बहुत कंपल्सरी है। तो पहली चीज आपने ऑक्यूपेशन देखी, दूसरी चीज आपने देखा कि जिस ऑक्यूपेशन में आप फॉल कर रहे हो उसकी स्किल्स असेसमेंट जो है वो आप कैसे ले सकते हो। कुछ स्किल्स असेसमेंट ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है और प्लस इंग्लिश होता है, बट कुछ ऐसी होती है जिसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। सेकेंड थिंग इज स्किल असेसमेंट, अगर आपके पास स्किल असेसमेंट नहीं है तो आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के लिए। सो फिर तीसरी चीज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो है वो 6 है, बाकी आपको ज्यादा लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो मैं चौथी रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ कि जिसमें आपको मिनिमम पॉइंट मीट करने हैं 65, ठीक है, 65 के लिए आप पूरे कर सकते हैं. बट उसके बाद जो बात आती है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट करने के बाद आप कब एलिजिबल हो गए, आपको तो की इनविटेशन आ जाए या आपको स्टेट स्पॉन्सर कर दे. सो उसके लिए आपको रेगुलर अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है 189 के इनविटेशंस के लिए, कि पॉइंट्स बेंचमार्क उनका कहां तक पहुंच गया है और आपको क्या करना पड़ेगा अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए. और साथ ही साथ आपको स्टेट्स के बारे में अपडेट लेनी पड़ेगी, सो दैट कि जैसे ही अगर आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपने मीट की हुई है, अगर आपकी ऑक्यूपेशन उस फील्ड में उस स्टेट में आ रही है और आप उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, इवन दो कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं कि अगर आप मिनिमम 65 भी मीट कर रहे हो तो वो आपको इनविटेशंस दे देती हैं. सो आप ये हैं बेसिक चीजें, अगर किसी ने भी अगर अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन के लिए जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
जी, तो जो बहुत कॉमन गलतियां अगर आप हमें कोई बता पाएं कि लोग जो कर देते हैं.
मैं गलतियों के साथ साथ ये बता देता हूँ कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो रही है. सो अगर आपने देख लिया कि आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, आपके पास स्किल असेसमेंट भी है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी मीट की हुई है, आपके मिनिमम पॉइंट्स भी बन रहे हैं, अब आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है. सो चाहे आप स्टेट की भी एप्लीकेशन डालेंगे, आपको ईओआई के स्किल सेलेक्ट के सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा. सो जब भी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालें, उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट जो है आपने एक्स्ट्रा क्लेम नहीं करना है. चाहे आप गलती से कर रहे हैं या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कुछ कोई भी पॉइंट आप एक्स्ट्रा क्लेम ना करें. और ये ज्यादातर होता है जब वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स जो है वो क्लेम करता है एप्लीकेंट. सो वर्क एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपने किस लेवल पे किया है, क्या डिपार्टमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा कि वो स्किल लेवल पे है या नहीं है, या आपने कहीं कैजुअल वर्क एक्सपीरियंस लिया, कैजुअल एक्सेप्ट करता है डिपार्टमेंट, बट जिस पीरियड का आपने लिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें बहुत सारा पीरियड ऐसा है जहां आपने मिनिमम आवर्स जो है स्किल्ड माइग्रेशन के, जो कि करंटली 20 आवर्स को वो एक्सेप्ट करते हैं वीकली, कहीं उससे कम है बहुत सारे पीरियड में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो वर्क एक्सपीरियंस को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं. सेकेंड थिंग, जब आपकी स्किल असेसमेंट होती है या हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, आईएलटीएस या पीटी का रिजल्ट है, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जब हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम्स हो जाते हैं कई बार, ठीक है. तो उस वेटिंग टाइम में कई बार ये क्या हो जाता है कि एप्लीकेंट्स ये भूल जाते हैं कि जो स्किल्ड असेसमेंट होती है या आईएलटीएस पीटी होता है उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, वो वैलिड होते हैं कुछ पीरियड के लिए. सो उस पीरियड को जरूर ध्यान रखें कि आपकी ये जो चीजें आपने उसमें डाली है एक्सपायर कब हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ईओआई जो है वो अभी भी स्टैंड कर रही है और स्किल्ड असेसमेंट जो है वो एक्सपायर्ड हो गई है या आईएलटीएस आपका एक्सपायर्ड हो चुका है और उसके बाद अगर आपको इनविटेशन आ गई तो वो आपकी जो ईओआई है वो इनवैलिड हो जाती है. तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड अदर थिंग, जैसे ही आपका कुछ भी अपडेट आता है आपके स्किल्स में या अपने पॉइंट्स में, उसको जरूर अपडेट कर देना चाहिए ईओआई को. कुछ का अपडेट्स जो है वो ईओआई खुद कर देता है, बट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस डाला है कुछ या नहीं भी डाला है, या आपने एक्स्ट्रा गेन कर लिया है ईओआई डालने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी और पॉइंट्स की बन रही है, या आपके इंग्लिश पहले 6 ईच था अब आपने 7 ईच ले लिया है या 8 ईच ले लिया है, आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं इंग्लिश में, या आपने कुछ और नाटी कंप्लीट कर लिया है. सो मेक श्योर कि आप अपनी ईओआई जो है जैसे ही आपके पॉइंट जब लगता है कि बढ़ गए सेम डे अपडेट कर दें, उसकी वेट ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा वेट करते हो उतना ज्यादा आपका जो इन्विटेशन आने में उतना डिले हो सकता है.
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं.